Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q3 and 9-month FY26 earnings conference call of Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited. As a reminder, all participant lines will be in a listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I will now hand the conference over to Mr. Pankaj Manjani, Company Secretary of Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers. Thank you, and over to you, sir.
Good afternoon, everyone, and we welcome all the participants to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited's Q3 and 9-month FY26 earnings call. Joining us today from the management side, we have Mr. Puneet Makharia, Chairman and Managing Director, Mr. Deepak Beliwala, Chief Financial Officer. Now, I'll hand over the call to Mr. Puneet Makharia for his opening remarks. Over to you, sir.
Thank you, Pankaj. A very good afternoon to everyone, and a very warm welcome to Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited Q3 FY26 earnings call. I hope you all had an opportunity to review our financial results and earnings presentation, which are available on the stock exchange and the company site. Joining me today from this management side is Mr. Deepak Beliwala, our Chief Financial Officer. In continuation of the growth momentum witnessed in the previous quarter, I'm pleased to share that Shree Pushkar Chemicals has delivered a strong performance during Q3 FY26. Revenue from operations was at 249 crores, reflecting a growth of 14.6% on year-on-year basis, driven by an increase in volume sold and sales in the chemical business. On the profitability front, EBITDA was at 22 crores with a margin of 8.9%, while profit after tax was at 18 crores with a margin of 7.3%. On the operational fronts, in addition to the ongoing capacity expansions planned at Ratnagiri Unit 5 and Unit 6 and at Meghanagar Unit 8, the company has completed the land acquisition, commenced civil work, and is in the process of placement of the orders for the critical plant and machinery. In line with the progress, 25% of the proceeds from the preferential issue has been directed towards the Meghanagar Unit 8 project. Shree Pushkar is also committed to driving sustainable growth alongside its expansion plans. In line with its commitment, the company currently operates a 9.8 MW DC solar plant, with the capacity being expanded through two additional installations. Upon completion, the total solar will reach to 20.6 MW DC under open access scheme. These initiatives are a part of the key strategy to enhance energy self-reliance, reduce carbon emission, and ensure long-term sustainability. The company has also incorporated a subsidiary in Bangladesh, that is Dicol Bangladesh Limited. This subsidiary will serve as a representative and marketing office for the company and will carry out related business activities in Bangladesh. During this quarter, the company carried out a preferential allotment to the promoter for rupees 30 crores. This makes a third preferential allotment by the company, underscoring the promoter's continuing confidence in Shree Pushkar's future prospects and its ongoing strategic growth plans. With these strategy initiatives backed by strong integration and sustainability-focused operation, Shree Pushkar remains well-positioned to sustain growth momentum and enhance profitability and create long-term value for all the stakeholders. Friends, I will now hand over the call to Mr. Deepak Beliwala, our CFO, to take you through the detailed financial performance of the quarter. Over to you, Deepak.
Thank you, sir. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us today. I will now take you through the financial performance of the Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited for the third quarter of FY26. Starting with the top line, revenue from operations for Q3 FY26 was rupees 249 crore, reflecting a growth of 14.6% on year-on-year basis and remaining broadly stable sequentially. This strong performance was driven by an increase in volume sold and sales in the chemical business. In the chemical segment, revenue was rupees 156 crore, a growth of 38.1% year-on-year basis and 18.2% quarter-on-quarter. driven by the improved volumes and strong demand. Sales volume for the segment was 26,595 metric tons, marking an increase of 75.6% year-on-year and 54% sequentially, reflecting continued stability in the chemical markets. In the fertilizer segment, revenue declined by 10.6% year-on-year to rupees 93 crore due to steady demand from the agriculture sector. On a sequential basis, revenue declined by 25% due to the seasonal moderation in the December quarter. In terms of the volume, the segment achieved sales of 53,444 metric tons, lower by 23.7% year-on-year and 26.3% sequentially. Moving to the profitability, gross profit for the quarter was rupees 79 crore, a growth of 2.4% year-on-year with the gross margin of 31.9%. EBITDA came in at 22 crore, a decline of 1.7% year-on-year with the margin at 8.9%. Profit before tax was rupees 20 crore, up by 8.8% year-on-year, while profit after tax was rupees 18 crore, up by 13.5% year-on-year basis. The PAT margin for the quarter was 7.3%. For the 9 months FY26, revenue from operation was recorded in 759 crore, a 29.2% increase year-on-year. EBITDA was rupees 77 crore, up 13.8%, and PAT was rupees 57 crore, up by 36% compared to the 9 months FY25, reflecting sustained momentum across both business segments. The company continued to maintain a strong financial position supported by the strong internal approvals and preferential allotment. As of 31st December 2025, non-lending deposits of amount to rupees 176.75 crore, providing ample liquidity to fund ongoing and upcoming expansion plans without relying on the external borrowings. To summarize, Q3 FY26 reflects steady performance for the city Pushkar, marked by the consistent revenue growth supported by the operational efficiency, disciplined financial management and a strong balance sheet. We remain confident of sustaining our growth momentum while continuing to strengthen our integrated and sustainable business model. With that, I will now open the floor for questions. Thank you.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask question may press star and one on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Preet Nagarjit from Wealth Find Advisors. Please go ahead.
Yes. So my question is that I wanted to basically understand why the gross margin declined from 35.7% in Q3 of FY25 to 31.9% for this quarter.
Just a second, please. Your question is, can you come again?
Puneet ji, apna gross margin ek saal pehle 35.7% tha, wo kam hua
hai. In terms of percentage aap baat kar rahe hain?
Haan ji sir, percentage ke baare mein.
35.7% okay.
Haan, wahan se ghat ke apna ek 31.2% hai, ye 31.9% hua.
And so, overall?
Overall 32.7 raha, 9 mahine ka apna.
And in terms of value? Because I am not in the office, Preet ji. So, you know, the exact data are not in front of me. So, my apologies for
Okay, sir. So, the gross profit has come to 79.3 crores. Absolute terms mein bada hai from quarter last year, 77.4 se. Basically, sir, kehne ka matlab ye hai ki revenue apna 15% bada hai kareeban aur gross profit 2.5% bada hai. So, sawal ye aa raha hai ki gross margin kam hua hai because cost of materials zyada dikh raha hai yahan pe. Ki raw material ka cost hai wo kaafi bada hai.
देखो सर, इस वक्त जो मेरे को जो समझ में आ रहा है बेस्ड अपॉन योर क्वेश्चन और द एंड द डेटा यू गेव टू मी इज दैट ये जो मार्जिन जो डिप दिख रहा है दिस इज मेनली इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन टू द यू नो दिस रॉ मटेरियल प्राइसेस दैट टू आल्सो स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ड्यू टू द सल्फर सर Sulfur is is a very important ingredient in our whole chain of the raw materials. Now, just say, we have got our various plants of sulfuric acid wherein we use sulfur as a basic raw material. And in turn, the sulfuric acid, oleum 23, oleum 65, thymine chloride, and like chlorosulfonic acid, these all are the derivatives of the sulfur. Or iski, whatever the acid we produce, almost 70-75% of the of this total acid we consume in house. Balance 20-25% hum log bahar sell karte hain. And if you look at the sulfur has started going up from mid of the second quarter till today. Traveling from $283-84 as of now, $560.
Oh wow.
As of now, $560. Aaj agar aap Argus ka price check karoge, it is 520 FOB.
Achha.
So I think main इस वक्त जो मुझे समझ में आ रहा है, further I will go in more details about this your input and I will again come back to you. But as of now, apparently जो मुझे दिखाई दे रहा है, this might be one of a major reason that the cost of the sulfur has gone up tremendously, which has resulted into the increase in the raw material cost.
अच्छा
सर, सिंपल चीज है, 1 किलो सल्फर में 3 किलो एसिड बनता है.
ओके.
Acid, which was earlier prevailing at 9,000-10,000 rupees a ton, now is at close to 18,000 rupees a ton.
Okay.
That could be the major impact to answer your question.
Okay. अच्छा तो सर, इसका मतलब ये भी होता है ना कि आगे जाके जो आपके prices जिस पे आप बेच रहे हो, ये sulfur से जो बनाते हो और जो आगे बेचते हो,
सर raw material price
price sulfur है,
सर वो इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आता, इट टेक्स बिग टाइम. अब जैसे मैंने कहा कि 9000 से 18000 हो गया, वो एक साथ नहीं आता सर, बिकॉज व्हाट वी इम्पोर्ट सल्फर, वी इम्पोर्ट इन अ बल्क, बट वो काउंटर इफेक्ट आने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है सर.
सही है सर, बराबर.
तो आई थिंक
क्वार्टर दूसरा सवाल.
हाँ बोलिए.
सॉरी,
आई बिलीव क्वार्टर फोर में उसका इम्पैक्ट शायद नहीं दिखना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है.
अच्छा सर, बढ़िया सर. हाँ, क्वार्टर फोर नॉर्मलाइज हो जाएगा
होपफुली.
करेक्ट करेक्ट, सही सही है सर. अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स में हैव डिक्रीज्ड फॉर दिस क्वार्टर
10%.
हाँ जी सर, तो उससे कुछ रोशनी डाल सकते हैं, व्हाट लेड टू दैट?
सर मेनली यही है कि भाई नुकसान में कितना बेचेंगे सर, कम बेचो, दो पैसा कम कम बेच लेंगे लेकिन नुकसान तो नहीं कर सकते सर. सेम स्टोरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर. सर ऐसा है, जब डबल एक टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ SSP यू रिक्वायर 0.35 टाइम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड यू कैन इमेजिन व्हेन द सल्फर प्राइस गोज ऑलमोस्ट डबल, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन द SSP.
ओके,
आपको
मतलब सर इम्पैक्ट आगे जाके क्या आएगा? क्वार्टर फोर में ये नॉर्मलाइज हो सकता है या आपको क्या
सर? कुछ लेवल पे होगा, कुछ लेवल दिस विल गो फॉर द नेक्स्ट सीजन. कुछ लेवल पे होगा, कुछ इम्पैक्ट इसका नलीफाई होगा अगले सीजन में. बिकॉज लेट मी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस वक्त कोई ज्यादा इस वक्त जो भी माल जाएगा वो पूरा प्लेसमेंट पे जाएगा, सेल होगा अगले सीजन में.
अच्छा,
उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा समय लगता है सर. अब आपको और इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूं तो भाई, आज 1 किलो आज 1 टन SSP के अंदर जनरली वी यूज टू टेक द सल्फर कॉस्ट द सल्फ्यूरिक एसिड कॉस्ट ऑफ अराउंड 3,500 रुपीज टू 4,000 रुपीज. सर टुडे हैज गॉन 5,500 रुपया.
Okay.
2,000 रुपए का इंक्रीमेंट इमीडिएटली फर्टिलाइजर के अंदर पुल करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है.
ठीक है सर,
इट्स अ बिट पेनफुल ट्रांजिशन फेज, बट देन टू ऑल्सो लुकिंग एट द होल बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, जीरो वेस्ट है, डेट फ्री है, वी हैव बीन एबल टू दिस परफॉर्म मच बेटर देन अदर देन अवर अदर कॉम्पिटिटर्स, सो वी हैव बिहेव्ड मच बेटरली देन अदर्स.
परफेक्ट सर. सर दूसरा क्वेश्चन था अपना यूनिट 5 का ओपनिंग का कमिशनिंग का आपका कुछ यू आर वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी लाइन सो
स्टिल वी आर वेटिंग द सेम सर अभी तक यू नो एज आई मेंशन लास्ट टाइम that MSADL has promised us that by the month of the February they would install an additional this transformer. Ab this is the beginning of the February. We hope for ki bhai ye February mein agar ho jata hai then we should be able to proceed further. Otherwise if you talk about the plant and machinery, almost the entire plant is completely ready and we just need to announce the commencement of the trial production, for which we are waiting for the electricity connection to be resumed.
ओके सो आपके हिसाब से अभी भी आप होप कर रहे हो कि ये महीने में हो जाए
सर MSADL ने प्रॉमिस किया है फरवरी में एंड वी आर इन 12th ऑफ फरवरी स्टिल देयर इज अ टाइम टू गो वी स्टिल अवेट एंड वी आर स्टिल क्वाइट होपफुल दैट वी शुड गेट इन फरवरी और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब वो लेट अस वेट फॉर द बेस्ट सर इसके अंदर थोड़ा सा इंतजार करते हैं वी होप इन नेक्स्ट फ्यू वन और टू वीक्स वी शुड हैव मोर क्लियरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट
ठीक है सर सर दूसरा क्वेश्चन ये पूछता था कि चाइना में जो न्यूज थे कि भाई 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स वो 10-12% ड्यूटी डाल रहे हैं जो जो वहां से एक्सपोर्ट होगा उस सब चीजों पे तो बेसिकली चाइना में ड्यूटी आएगा
वो ड्यूटी नहीं डाल रहे हैं वो जो वैट रिफंड देते हैं
हाँ जी सर
वो वैट रिफंड कैंसिल कर रहे हैं
ठीक है सर तो इसकी असर हम पे कोई पॉजिटिव असर दिख रही है
सर अगर आप डेटा उठा के देखोगे लास्ट जून जुलाई 2025 से लेकर आज तक का डेटा आप उठा के देखोगे 5-6 साल पहले HSA विनाइल सल्फोन इंडिया में इंपोर्ट हुआ करता था अभी सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर जहां तक मेरा डेटा करेक्ट है तो लास्ट जून जुलाई से लेकर आज तक कम से कम भी 7-8 हजार टन तो HSA एक्सपोर्ट हुआ है दिस इज द होल टर्निंग of the industry wherein you will see that earlier these products were being imported from China now these products are being exported to China so this you can easily visualize the kind of a change and just imagine once the this happens like this reduction or this removal of the VAT refund ultimately China has become non competitive
right sir
ठीक
है सर ग्रेट थैंक यू सर थैंक यू फॉर द अपडेट्स
थैंक यू सर
थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ हर्षल सोलंकी फ्रॉम इक्विटी कैपिटल प्लीज गो अहेड
हाय पुनीत जी गुड आफ्टरनून
हाय हर्षल जी गुड आफ्टरनून
सर मेरा क्वेश्चन था अभी बांग्लादेश में न्यूज आर्टिकल्स है कि वहां पे टेक्सटाइल मिल्स स्ट्रगल कर रहे हैं और थोड़े मिल्स ऑलरेडी बंद हो गए और थोड़े 50% लेवल से काम कर गए तो डज दिस अफेक्ट आवर बिजनेस नेगेटिवली बिकॉज इफ बांग्लादेश में काम कम होता है तो अपने को इम्पैक्ट होगा और हमने अभी मार्केटिंग के लिए एक बांग्लादेश में सब्सिडरी भी खोला है तो वो
सर ऐसा है जो है। आप न्यूज आर्टिकल की बात कर रहे हो वो आर्टिकल मैंने भी देखा है मुझ तक भी आया है और मेरा उसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से है कि यू नो आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यूज विद यू ऑन ए वेरी ओपन प्लेटफॉर्म राइट बिकॉज यू नो मेरा उसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से है कि वहां पे जो एसोसिएशन हैज मतलब सरकार को बोला है कि अगर हमको ये नहीं किया दे पुट अप सर्टन ऑफ देयर डिमांड्स इफ देयर डिमांड्स आर नॉट मेट टू द देयर रिक्वायर्ड लेवल्स दे विल शट द होल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ This is what I have understood from that news article and from the various inputs and this various intelligences, what the people and connections we have in Dhaka, number one. Number two, sir, Bangladesh ke andar textile ke alawa koi bahut badi economy, Bangladesh ki economy ka bahut bada part hai textile. You know, without this textile, Bangladesh economy is difficult to run. Though there is a political instability in Bangladesh, I can understand whatever the news articles we are reading in the various print media or the digital media is a bit scary. We have stopped going to Dhaka for the past few weeks. Our people had traveled to Dhaka almost 3 mahine pehle. After that, we have not traveled to even Dhaka also. But as far as the business is concerned, let me tell you very loud and clear, there is still business coming from Dhaka. Yes, volumes have reduced. But we also believe strongly, and the kind of inputs we get from our customers there, that this is a very temporary phenomenon, which will, you know, this subsidize post-elections. Election शायद उन लोगों के 12 तारीख से declare हुए थे, अगर मेरी गलती नहीं है तो शायद आज से ही है, 12 तारीख से या 12 मार्च से है, I'm not too sure about that. Once the election is completed and the proper government is established in Bangladesh, I'm sure, you know, the things will come back to the track. The kind of, you know, uncertainty is going in Dhaka is, in my opinion, it is just a temporary, it is not a permanently. We also need to believe कि भाई ढाका की इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर चलती है, देयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देयर गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन, देयर टैक्स जनरेशन इज मेनली फ्रॉम, यू नो, दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आज अगर कोई छोटा मोटा कोई टाइम गैप भी आता है, जहां पे लगता है कि भाई ये, यू नो, सम एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन के आता है, आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू रिमेन फॉर ए लॉन्गर टाइम. सेकेंडली, एज फार एज श्री पुष्कर इज कंसर्न, वी हैव अराउंड, यू नो, 50 करोड़ ऑफ बिजनेस और मे बी 60-70 करोड़ ऑफ बिजनेस एनुअली विद ढाका, विच इज हार्ड, यू नो, विच इज अराउंड, यू कैन से 7 or 8% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. इन द मीन टाइम वी ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर मार्केट्स ऑल्सो लाइक इजिप्ट एंड अदर कंट्री, यू नो, वियतनाम एंड इंडोनेशिया. सो बांग्लादेश इज डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू लीव. As far as our new company establishment is concerned, Dicol Bangladesh Limited, that company we have made with, you know, this entire platform has been established by us, but we are yet to start some business or some marketing into this company. We are only waiting for the stability to come, which I believe in next, you know, this post this election, it should be there.
Okay, sir, understood. The next question, केमिकल रियलाइजेशन ड्रॉप हुआ है 21% से. वॉल्यूम्स अपने काफी अच्छे से बढ़े बट रियलाइजेशन कम हुए, तो आप समझा पाएंगे क्योंकि सल्फर प्राइसेस हैव गॉन अप, तो रियलाइजेशन क्यों कम हुए?
सर अल्टीमेटली कॉस्ट में फर्क पड़ेगा ही ना. देखिए सर, अल्टीमेटली कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, एंड यू नो दिस इज अ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बिजनेस वर्टिकल सर. यू नो द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट व्हाट आई बिलीव इज दैट, यू नो, कि यहाँ थोड़ा कम हुआ, वहां थोड़ा बढ़ा, ये एक बहुत एक, यू नो, ये ऐसी चीजें आने वाले और वेरियस क्वार्टर्स के अंदर भी आएंगी. बट द वेरी इंपॉर्टेंट इज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड कीप योर वॉल्यूम्स, कीप योर कस्टमर्स इंटैक्ट विद यू, वेदर यू मेक सम मनी वेयर मोर, सम, यू नो, सम लेस मनी सम एट सम अदर प्रोडक्ट्स. In my opinion, that's not an important criteria. The important criteria is the growth into the business, growth into the volume, addition of the new, you know, few more customers, managing your inventories and your book debts. That is more important, sir. There are various factors. जैसे कि सल्फर एक फैक्टर है, which I explained just now on this phone call. तो उसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता सर, मेरी ओपिनियन से.
ठीक है, अंडरस्टूड सर. सर लास्ट क्वेश्चन है, लेबर कोड का अपने को कितना इम्पैक्ट हुआ है, इफ वी कैन क्वांटिफाई दैट?
विच लेबर
सर? लेबर कोड का जो इम्पैक्ट है वो हम Q4 में आइडेंटिफाइड करेंगे, जो हमारे स्टेचुरी ऑडिटर से भी बात हुई थी और ग्रेजुएटी वेल्युएशन से भी बात होगी, तो उसका पूरा पिक्चर Q4 में क्लियर होगा सर.
बट दीपक, दिस इज विच लेबर कोड इज टॉकिंग अबाउट?
सर अभी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया लेबर कोड अनाउंस किया है, जिसमें सैलरी से रिलेटेड काफी सारी चीजें चेंजेस
ओके ओके
आई गॉट इट.
दैट इज न्यू कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द लेबर व्हिच हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली.
यस यस
ओके
सर, ये साल का सर गाइडेंस पीस पे इफ यू कैन
सर, मेरे ख्याल से जहां तक ये साल का है, वी हैव बीन ऑलवेज मेंटेनिंग दैट वी शुड बी अराउंड 950 और सो. इन माय ओपिनियन वी शुड बी क्लोज टू, यू नो, 4 डिजिट में तो आ जाने चाहिए सर.
ओके, एंड नेक्स्ट ईयर सर?
अब नेक्स्ट ईयर सर, आई स्टिल मेंटेन माय अर्लियर स्टेटमेंट ऑफ 1500, विच आई बिलीव शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम.
ओके, एंड बेस केस हम 8% मार्जिन तो पकड़ के चल सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो अलग.
सर ये साल में अगर मैं बात करूं आपसे, जो मेरा ओपिनियन है, मेरी सोच है, कि कहीं ना कहीं 1000 करोड़ रुपए का टॉप लाइन रेवेन्यू आना चाहिए एंड वी शुड बी एट ए पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 8% और सो अप्रोक्सीमेटली. आई एम टॉकिंग अबाउट पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 8% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आई बिलीव देयर वुड बी इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो सिंस द होल सिनेरियो इज ऑल्सो इम्प्रूविंग द काइंड ऑफ ए पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड दिस ग्लोबल वॉट वी सी इज यू नो ये जो चीजें चल रही हैं यू नो अमेरिका ईरान इसराइल रशिया यू नो ये जो सब चीजें चल रही हैं आई बिलीव दीज थिंग्स वुड ऑल्सो कम टू सम काइंड ऑफ ए लोअर डाउन मेलो डाउन एंड इन दैट सिचुएशन आई बिलीव देयर वुड बी इम्प्रूवमेंट इन द बॉटम लाइन ऑल्सो.
Understood, yeah. So, this was it. Thank you for answering my question.
Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Saket Kapoor from Kapoor & Company. Please go ahead.
Namaskar, sir.
Haan, namaste, Saket ji.
Ji, sir. सर बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर ऑलरेडी सर कंप्लीट हो गया है. एक जो अभी आपने नेक्स्ट ईयर के लिए सर जो हमारा रुझान है 1500 का उसमें सर हमारी क्या क्या फैसिलिटीज एंड प्रोडक्ट स्ट्रीमलाइंड होंगे तो उनका सर
संक्षिप्त में का हम लोग इंतजार कर रहे हैं विच आर वेटिंग फॉर यू नो एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बाय द कंपनी एंड इन दैट देयर इज वन एडिशनल ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्स यूनिट which is NPK and phosphoric acid and sulfuric acid and one more unit at unit 5 which is a dice plant. Both these plants are almost completely ready to start with. Ab thoda sa ek bari electricity ka humko aa jaye because you know honestly speaking we also thought ki hum log diesel generator le aaye kya. Diesel generator jo hai sir wo practical nahi hai. Us pe pura plant chal nahi sakta और उसके अंदर वो यू नो चीजें वर्किंग हो नहीं सकती उसके अंदर. सो वी यू नो इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस सो वी नीड ए परमानेंट रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर जस्ट अवेटिंग रेस्ट एवरीथिंग इज कम्प्लीटली. सो व्हाट आई एम टॉकिंग इज दैट द एडिशन ऑफ दीज टू फैसिलिटीज ऑफ एनपीकेज एंड दिस एडिशनल डाइज यूनिट दीज टू यूनिट्स विल गेट अस मोर बिजनेस बट देन टू ऑल्सो ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 1500.
जी सर और सर इसमें आप यूटिलाइजेशन लेवल क्या मैंने धारणा करके चल रहे हैं जो नई यूनिट जो आएंगे.
बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें कहीं ना कहीं 60-65% के आसपास का यूटिलाइजेशन ही अज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग बिकॉज ये यू नो आई एम ए बिट कंजर्वेटिव एंड ए बिट दिस प्रैक्टिकल पर्सन और समझो कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कहीं ना कहीं मार्च में भी मिल जाता है वर्स्ट के सिनेरियो में तो सर प्लांट को ट्रायल पे चालू करके इस्टेब्लिश करना टीडिंग ट्रबल्स को निकालना बैलेंसिंग करना और जब आप नया प्लांट चालू करते हैं तो वेरियस प्रकार की समस्याएं भी उसके अंदर आती हैं. 2-3 महीने तो सर उसमें लग जाते हैं अगर कोई बड़ी समस्या नहीं आई तो यू नो 2-3 महीने उसमें लग जाते हैं और कल को कोई चालू करने के बाद में दिखाई दिया कि ये तो भैया एक अनएक्सपेक्टेड एक नया ही माहौल खड़ा हो गया तो इट मे टेक अनदर 1 or 2 months मोर ऑल्सो सर. सो टेकिंग इन ऑल दीज अकाउंट इन फैक्टर आई बिलीव कि 60% एफिशियंसी इज ए बिट प्रैक्टिकल एंड कंजर्वेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द सेम आई एम प्रोजेक्टिंग एटलीस्ट 1500 crores. दिस एडिशनल 500 crores इज नॉट ओनली गोइंग टू बी जनरेटेड फ्रॉम दीज टू एक्सपेंशन देर इज इन यू नो एडिशनल यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज ऑल्सो इन माई ओपिनियन.
अभी तक जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनका यूटिलाइजेशन लेवल सर 9 महीने के लिए क्या रहा है एवरेज में.
दीपक डू यू हैव दैट फिगर.
दीपक जी हमें जैसे कोई एक्सटर्नल डेट नहीं है हमारी बुक्स में तो क्या हमारी कोई रेटिंग एंड ऑल भी अभी ड्यू है या हमें करानी पड़ती है वर्किंग कैपिटल लिमिट्स के लिए.
वो अपना इकरा का जो रेटिंग होता है वो मे में ड्यू है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे है अपना इकरा का रेटिंग.
अच्छा सर मई में ड्यू होगा सर May 20.
वैसे क्या रेटिंग है दीपक. आई थिंक इट इज A+
जी सर
वो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं. अपना केमिकल सेक्टर में जो यूटिलाइजेशन है वो 65% है और फर्टिलाइजर्स में है 55-60% इन 9 months.
जी सर पुनीत जी, जैसे आपने शुरुआत में मेंशन किया था कि फर्टिलाइजर में सल्फ्यूरिक एसिड का जो पास ऑन का जो लैग इफेक्ट है उसके कारणवश आपने सर लॉसेस की बात कुछ बताने की चेष्टा की थी एग्जैक्टली सर, उसमें आप
लॉसेस
क्या?
के बारे में मैंने कोई बात नहीं करी थी सर, लॉसेस की मैंने कोई बात बताने की कोशिश नहीं करी थी। मैंने खाली ये बोलने की कोशिश करी थी कि दैट हैज बिल्ट इन प्रेशर ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट वॉज माई सबमिशन।
हाँ सर, ओके ओके, क्योंकि सर सुनने में कुछ शायद मैंने गलत इंटरप्रेट किया, आपने कहा कि
बिकॉज़
इतना कम बेचेंगे ना,
because the first question was that the this margins have slided from 35% to 31%.
Yes sir, नहीं सर बाकी सब जानकारी तो विस्तृत है। ऑल द बेस्ट सर आप सभी को सर, आगे का समय मंगल में रहे सभी के लिए।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क क्वेश्चन। The next question is from the line of Varun Sharma, an individual investor. Please go ahead.
Hello.
Yeah.
Good evening, sir. For
yes, Mr. Varun.
The opportunity. Thanks for
Thank
the
you.
Opportunity, sir.
Thank you, Varun.
Sir, I wanted to know that two deals have been cracked by India. One is the mother of all deals, the European Union deal and the American deal. Sir, do we see any positive impact from the European deal on our company? Because we can export to Europe also our textiles.
Yes, sir. We do export to Europe, and yes, obviously we believe that there would be a, you know, this part of pie which we would be enjoying in that, because we have a big customer of our one of a vertical based in Europe, and in my opinion, we should be more competitive to him other than the China. And but the same competition is also there with the, you know, with our other competitors based in India also. So we believe, yes, it would be on a positive note, thanks to the Honorable Prime Minister, that he has taken a very positive view and, you know, did this lot for this entire industry in India. In my opinion, that should be a positive outlook, sir. But, you know, in time, we need to see that how it is reflected into the performance.
Okay, sir. Sir, my second question is that as there is a lot of geopolitical tension between America and Iran, I hope we don't export anything to Iran.
We don't have any business to any sanctioned country, sir. Whether it is Iran or Russia or any other country, whatever it is, we don't have any business interest and business these things with this, you know, with the sanctioned countries.
Right, sir, my last question is that as we go forward, out of the two businesses, fertilizer and chemicals, in which business more pressure is expected in this profitability?
Sir, pressure to sab mein hi, you know, hai. You can't say that ki pressure kis mein kam hai. You know, both the businesses have their individual, you know, features. And being the whole business model is completely integrated on a based on a zero waste business model. And financially, company is, you know, this quite healthy and strong. Though it's not a very large company, it's a mid-sized company, and looking at the, you know, this kind of financial performance of the company, we see that both the businesses are equally important for the company, because the whole, you know, this both the businesses are integrated with this one another. So,
okay, sir. Yes, sir.
Yeah.
Continue, please, sir. Yes, sir. I wanted to. Yes, sir. One more question, sir. What is the minimum margin we should expect that the company will not go below that level in the PAT margin?
2 saal pehle we went down till 5.5%, but
yes,
that was a different global situation, and today we have reached to a level of 8%. In my opinion, we still have a capacity and capability of going it to around 10-11% in times to come.
And what is the lower end, sir?
Sir, lower end, to kya main aapko batau, sir, uske andar? Matlab, I can't predict. How can I say ki what could be the lower end when this, what could be the higher end? We are doing our level best.
Sulfur ke prices bahut badh gaye hain.
Haan ji?
Jaise sulfur ke prices bahut badh gaye hain. Ki hum kahan tak, matlab ki kahan?
Sir, sulfur ke prices badh gaye, uske bawajood bhi overall profit margin to company ka sudhra hai ki nahi sudhra hai?
Bilkul, bilkul sudhra hai, sir.
बस लेट अस हैव ए पॉजिटिव व्यू सर, We look, there is a, you know, this great opportunity lying ahead. We have excellent business model. We have we have excellent track record. We are a financial stable company, and you know, being we are the financial stable company, therefore we have completed and you know this expansion of 175 crores from internal accruals. We have we are on the verge of completing this additional expansion of 155 crores also. Over and above, we have also announced the third expansion also to of 347 crores. In that too, also promoter is also doing it the you know this third preferential allotment.
Yes, yes. Thank you, sir, for the opportunity, sir, and
thank
all
you.
The best.
Thank you, sir.
Thank you. The next question is from the line of Neeraj from Branch Group. Please go ahead.
Thank you for the opportunity and congratulations on great set of number. My question is, I'm on the slide number 14 of your presentation.
Sorry?
I'm on the slide number 14 of your presentation. So,
okay. Deepak, can you open slide number 14?
Sorry.
Okay, please go ahead.
So unit number 5 and 6, you are saying that it's expected to get started in Feb 2026. But then I'm seeing the capex outlay.
Wait. No. Sir, I have not said like that. I have said, as follows, that we are expected to...
Successful the electricity connection, you can get started the unit 5 and 6 in Feb of 2020.
We are expected to start the trials somewhere by the March if we get electricity connection by February.
Yes, yes. But I'm seeing that unit 6, the capex outstanding is close to 60 crore. So I don't know if these numbers are as of 31st December or as of current number. But with such a large capex, is the plant almost complete?
Sir, 155 crores ke capex mein, it is not only unit 6. It is unit 6 plus unit 5 mein dice plant plus our solar of 10 megawatt. Am I right, Deepak? Correct me if you found me wrong, Deepak.
Sir, आपका 10 करोड़ का जो unit 6 का है, उसी capex की बात कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि capex incurred is 50 crore and capex
outstanding. ने 110 करोड़ का लिखा है ना, उनकी बात कर रहे हैं सर.
Okay. Sir, unit 6 में अभी 25-30 करोड़ रुपए का capex और बचा हुआ है, which is ongoing. We haven't, that is under process, which I believe should be completed before March.
Before March, okay. The second question is with regards to the, jo aapka unit 8 hai, where you are saying it is by March 2028. Now, since the land acquisition and everything is completed, can't it be completed in 18 months? Like?
No, sir, you know, it's a greenfield project. Pardon?
Is this a conservative estimate of March 2028 to keep?
Sir, it is a practical estimate because, you know, there are three plants in Unit 8 also. It is not only one plant. These are three plants. And the capacity is also quite decent capacity. It's almost the double the capacity of our existing Unit 6. You know, so we believe that, you know, this is at least going to take 2 years or so.
Okay. And is there any chance, any thought process in the promoter mind that we create two separate companies, we merge the chemical and fertilizer business, or it's going to be staying as an integrated operation forever?
So we are open to the, you know, various views and ideas for the benefit of the shareholders and the company. In future, if any such, things come, we will keep you updated.
Okay.
But
thank you.
We are open to the benefit of, this wealth of the shareholders.
Understood. Thank you. All the best.
Thank you, sir.
Thank you. A reminder to all the participants, you may press star and one to ask question. The next question is from the line of Praveen Agarwal, an individual investor. Please go ahead.
Thank you. Puneet ji, apna question ye hai ki ye jo apna plant Feb March ye jo apne capex kar rahe hain Feb March April kabhi bhi chalu hota hai. Apne ek saal aage nahi dekh rahe, apne 2 saal nahi dekh rahe, but लेट से अपने 2-2.5 साल के अंदर अभी अपने 1000 करोड़ लगभग अभी कर रहे हैं और ये दोनों मिलाकर अपने लगभग 1000 करोड़ और कर सकते हैं, तो 2-2.5 साल के अंदर अपना रन रेट 2000 करोड़ तक का पहुंच जाना चाहिए।
नहीं प्रवीण जी, 2500 से 3000।
सो ये अपने सोच सकते हैं कि 2030 से पहले पहले अपने 3000 करोड़ का सेल की कंपनी अपने बन सकते हैं।
प्रवीण जी
क्योंकि आप कंजर्वेटिव हो, अपने भी कंजर्वेटिव है सर,
है?
मैं बोल रहा आप कंजर्वेटिव हो, मैं भी कंजर्वेटिव हूँ, अपने ये सोच रहे हैं कि अगर उसमें भी अपने पहुंच जाएंगे
सर, वो डबल कंजर्वेटिव विल मिसलीड अस।
अच्छा एंड सर वुड इट बी फेयर एस्टिमेट कि अगर अपने जब स्केल भी कर लेंगे तो अपने को थोड़ा सा कहीं 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 कॉस्ट की भी बेनिफिट होगी, तो अपने नेट लेवल पे 9 से 10% एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं?
सर देखिए, अगर आप मेरे से बहुत स्ट्रेट इस सवाल का जवाब चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं 2029 के अंदर 2500 मिनिमम रिवेन्यू होना चाहिए, और यू नो अगर ये चीजें जिस लेवल पे चल रही हैं इसी लेवल पे भी चली और कोई बहुत बड़े सुधार की भी उम्मीद नहीं है, तो सर कहीं ना कहीं 9 से 10% की पैट लाइंस अपने को मिलनी चाहिए।
थैंक यू सर, ये अपना आंसर हो गया। सर दूसरा मैं डाइज की उसके लिए समझना चाहता था, अपने जो ये डाइज का प्लांट है ये अपने रिएक्टिव डाइज बनाते हैं, डिस्पर्स बनाते हैं, दोनों बनाते हैं?
सर ये रिएक्टिव्स और एसिड का प्लांट है, इसमें हम रिएक्टिव्स भी कर सकते हैं, इसमें हम एसिड भी कर सकते हैं।
सर मैं कलकत्ता मार्केट से हूँ और डाइंग इंडस्ट्री में हूँ। सर मैं अपने तिरपुर का मुझे नहीं आइडिया, बट कलकत्ता मार्केट में अभी तक अपना डाइज देखा नहीं अपने यहाँ पर, आपने एक्सपैंड इधर नहीं किया लोकल
में? सर हमको, अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मेरे को लोकल में बेचने में हम लोगों को कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता सर।
अच्छा।
बराबर है, लोकल के अंदर आप ऑलरेडी जब इस प्रकार के बिजनेस में हो तो आपको मालूम है कि भाई यू नो किस प्रकार का सिस्टम डाइस के अंदर लोकल में चलता है। वी ऑलवेज प्रीफर टू सेल अवर प्रोडक्ट यू नो ओवरसीज, नॉट इन लोकल। और सर आपका बुरा मत मानना प्रवीण जी, आपका कलकत्ता मार्केट कैसा है, यू नो लोग कैसे पेमेंट देते हैं मेरे से ज्यादा आप जानते हो सर।
पर आपको तो सर आपको तो डीलर को देना सर, डीलर तो आपका आपको टाइम से
भाई साहब डीलर कौन सा कोई क्या नाम कोई हुंडी पट्टा लिख के देता है कि भैया नहीं आया तो मैं दूंगा। यू नो एटलीस्ट यू नो व्हेन वी एक्सपोर्ट दीज प्रोडक्ट्स so there is a surety of the payment because this is against an confirmed instrument of the banking. You got my point?
Yes sir.
और लोकल के अंदर जैसे सर हम लोग आज लुधियाना में एक्टिव हैं, वेस्ट इंडिया में एक्टिव हैं, साउथ इंडिया में एक्टिव हैं, कलकत्ता मार्केट हम लोग एक्टिव नहीं है सर, बिकॉज वी ऑलरेडी बर्नड अवर यू नो दिस ऑयल ऑफ मिडनाइट इन रिकवरिंग अवर मनी फ्रॉम दिस ईस्ट मार्केट। कलकत्ता में हमने 1-2 डीलर बनाए थे बट वो छोटा मोटा पैसा आज भी अटका हुआ है उनके अंदर।
अच्छा सर, सर मैं एक बस लास्ट क्वेश्चन है, अपने ये जो अपना रिएक्टिव डाइज है ये अपने कलर टेक्स और जय वगैरह के मुकाबले अपने सेम लेवल पे वो करते हैं या अपना उनसे बेटर है, अपना उनसे इंफीरियर है, चाहे नंबर ऑफ कलर्स का गैमेट हो, ऑप्शंस हो या क्वालिटी हो, ये हाउ डू वी अपने अपने उनको अगेंस्ट में?
आई थिंक प्रवीण जी ये बिजनेस क्वेश्चन है, ये बिजनेस क्वेश्चन अपन इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। सिंस यू आर इन टू द सिमिलर इंडस्ट्री यू कैन स्पीक टू मी इन अ डिफरेंट कॉल एंड आई कैन यू नो। प्लस सर एक बात आपको और बता दूं, यू नो जहां तक मेरे कॉम्पिटिटर्स का सवाल है, आई एम नॉट यू नो आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस द प्लस पॉइंट ऑफ माइन एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ देयर्स और दिस प्लस पॉइंट ऑफ देयर। दो बोथ द कंपनीज यू नेम्ड आर रिस्पेक्टेड कंपनीज, आर माई गुड फ्रेंड्स, माई क्लोज फ्रेंड्स एंड माई कस्टमर्स ऑल्सो।
अपना एच एसिड विलायन सल्फेन वगैरह जाता होगा उनको?
हाँ, तो ये बिजनेस कॉल है सर, वो अपन एक अलग कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, इस कॉल के ऊपर ये बिजनेस सब्जेक्ट डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता सर।
ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू FY29।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू।
थैंक यू। अ रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क क्वेश्चन। The next question is from the line of Yash Jhunjhunwala, an individual investor. Please go ahead.
नमस्ते सर, मैं ये एक्चुअली इंडस्ट्री में थोड़ा नया हूँ सर. आप मुझे समझा सकते हैं कि अपना जब करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन बोथ द इंडस्ट्रीज, आपने कहा कि केमिकल्स में शायद 65% है एंड फर्टिलाइजर्स में 55% है, तो जब हमारी कैपेसिटी हम पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ये एक्सपेंशन के लिए क्यों जा रहे हैं?
सर ऐसा है, हम लोग जो एक्सपेंशन कर रहे हैं दो द सेगमेंट वुड बी द सिमिलर और द सेम बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. नंबर एक चीज. नंबर दो चीज कि एज फार एज माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न देर आर वेरी लेस कंपनीज हु आई बिलीव दैट आर एबल टू अचीव यू नो 100% कैपेसिटी. ऐसा मेरा मानना है सर. Or, you know, if we have a different gambit of certain different products, then we have a, you know, the better scalability in the market also. And whatever the expansion we are doing, and which is under process, is not of a, you know, same products. It's of a different product, but with a similar segment. So I think that will give us more edge in penetration with our customer base also. And since we have a similar kind of a selling platform, our sales team, our dealer network is the same, and dealers sell various kind of different products in fertilizer. We only supply him one or two these products. In case if we can, you know, offer him other multiple products also in, of a similar segment, that would be a better scalability into the market.
थैंक यू. मेरा सेकेंड क्वेश्चन था सर कि अपना क्यू थ्री में इन द फर्टिलाइजर सेगमेंट आई कैन सी कि अपना जो वॉल्यूम था वो 70,000 टन से लगभग 53,000 टन के आसपास आ गया है, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस डिक्लाइन?
सर देखिए उसके दो कारण हैं. एक तो इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, वेयर एज वी हैव नॉट बीन एबल टू पास ऑन द एंटायर कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज रॉ मटेरियल टू अवर कस्टमर्स. Therefore, we preferred to sell less. Because आज अगर दाम नहीं मिल रहा है तो I would not like to, you know, do the business. And until unless there is a profit of margin into the business, it is not, in my opinion, you know, we should be slowing down at that time. जितना होए उतना करो, otherwise let's wait and watch. Secondly, this third quarter जो है ये generally, you know, बहुत सारे pockets ऐसे हैं fertilizer के अंदर कि जिसके अंदर ये सीजन उस समय नहीं रहता है, बिकॉज बीइंग इट्स अ विंटर सीजन गोइंग ऑन, तो जनरली उस समय पे थोड़ा सा फर्टिलाइजर बिजनेस के वॉल्यूम स्लो रहते हैं. इन ये दोनों चीजों को मिला के ये जो भी इम्पैक्ट आया होगा, दिस इज ए डी ग्रोथ इन टू द दिस फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स.
ओके. एंड लास्टली सर, आप कॉल के शुरुआत में कह रहे थे कि चाइना में जो वैट रिफंड वहां के एक्सपोर्टर्स को मिलते थे वो अब धीरे धीरे करके चाइना गवर्नमेंट बंद कर रहा है, कम कर रहा है, तो उससे हमारे दोनों वर्टिकल्स में एक फ्रॉम रॉ मटेरियल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स पर्सपेक्टिव, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग एंड हाउ इज दिस अ नेट नेट गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर अस?
Sir, it is going to be net-net positive because since the China is reducing its exposure in the international market for the dyes intermediates as well as the dye stuff. So, leaving apart China, there is only one country left, which is India, which has the, you know, the whole chemistry technology for these intermediates and dye stuffs in the globe. And China itself has got a huge consumption of the dye stuff within house, and they're in the India. They export most of their products. As I told before also, if you pick up the import and export data, you will see that on net, there is an export from India to China of these dyes intermediates. So I look forward that these are the good signs for getting more, you know, this recognition for the Indian dye stuffs industry.
Okay. Thank you, sir.
Thank you.
Thank you. As that was the last question for the day, I would now hand the conference over to the management for closing comments. Over to you, sir.
Thank you, everyone, for joining us on Q3 and 9 months FY26 earning call. If you have any further questions, please feel free to contact us or our investor relation advisor, Churchgate Partners, and we will be happy to address all your queries. Thank you very much and have a good day.
Thank you. On behalf of Shree Pushkar Chemicals and Fertilizers Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines. Thank you.